संबंध सत्कर्म सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। व्याख्या चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांताम उपाश्रिता। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तोल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आ जाती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही मरना होता है। चिंता के दो विषय होते हैं, एक पारमार्थिक दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसा हो। चिंता परब्रह्म विनिश्चयाय, इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ पुरुष है। परंतु आसुरी संपदा वालों को तो ऐसी चिंता होती ही नहीं, वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित रहेंगे, हमारा मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की भी फटी लंगोटी और फटी तुम्बी बाकी बसती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से मनुष्य मरता न हो, धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बनाया हुआ था कि बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाजा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न जल हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा भी नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, ये भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न खाने के लिए नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कोड़ी का भी संग्रह नहीं करते ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देता है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। धान नहीं धीणो नहीं नहीं रुपयो रूप, जीमण बैठे रामदास आन मिले सब थोक। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा न करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमाः, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर ले और भोग भोग ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य यह है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं। एतावत इति निश्चिताः, उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना इसके सिवा और कुछ नहीं है। इस संसार में भी जो कुछ है यही है, अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहां शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लो वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं, आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। परिशिष्ट भाव, भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है।